भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 भज मन मेरे आठूयाम राम 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 देवियों। मां लक्ष्मी ने एक तब भगवान से पूछा, प्रभु एक जीव को परमानंद की प्राप्ति कैसे हो, परम शांति की प्राप्ति कैसे हो, कोई सुगमतम ढंग बताइएगा। भगवान श्री मां लक्ष्मी को उत्तर देते हैं, लक्ष्मी जो कोई अपने मन को परमेश्वर के सिमरन में तल्लीन रख सकता है, सिमरन में तल्लीन रखते हुए मन को नियंत्रित कर सकता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। पुनः सुनिए, जो अपने मन को परमेश्वर के सिमरन में राम स्मरण में तल्लीन करता हुआ अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है, मन को नियंत्रित कर लेता है, वह परमानंद को प्राप्त कर लेता है। सिमरन तो उस साधु क्षणों हम सब लोग करते हैं, लेकिन हमारा मन तो अभी तक नियंत्रित नहीं हो पाया है, मन अनुशासित नहीं हो पाया है, इसलिए हम सब उस परमानंद उस परम शांति से वंचित हैं। कल जिस सेठ की चर्चा चल रही थी उसकी समस्या भी यही है। कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने मन को नहीं दी, मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ है वह सब कुछ इसको मैंने दिया है। महात्मन ये इतना चंचल है कि इसके बावजूद भी अभी तक संतुष्ट नहीं है और मांगता है। कृपा करके
इसको संतुष्ट करने का मुझे ढंग सुझाइएगा। थोड़ी देर आंख बंद करने के बाद संत महात्मा लाला को कहते हैं, लाला परमेश्वर ने इस संसार में ऐसा कुछ नहीं बनाया जो निरुपयोगी हो। यदि काम ना होता तो सृष्टि समाप्त हो जाती, सृष्टि आगे बढ़ती ना। हां अमर्यादित है तो संत महात्मा कहते हैं अमृत भी विष हो जाता है, कुछ भी निरुपयोगी नहीं है। एक की निष्ठा दूसरे का स्वादु भोजन है। मानो परमेश्वर की सृष्टि में कुछ निरुपयोगी नहीं है, नथिंग इज यूजलेस, हर एक की यूटिलिटी है। अतएव संत समझाते हैं, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि अहंकार इत्यादि निरुपयोगी नहीं है, इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें मर्यादित करने की आवश्यकता है, इन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है। इसी को मन का नियंत्रण कहा जाता है, इसी को मन को अभिभूत करना काबू करना कहा जाता है। संत महात्मा समझाते हैं, कहते हैं लाला जिसको हम चंचल कहते हैं वह चंचल नहीं है, हमने उसे बनाया है, वह तो बहुत विवेक युक्त है, विवेकी है। मन में जिज्ञासा उठती है, ये संत महात्मा कैसी बात हमें बता रहे हैं। कहते हैं मन क्या चाहता है लाला, ये जानने की कोशिश करो। मन परमात्मा की भक्ति चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, भक्तिमय जीवन साधनामय जीवन चाहता है, वह परम शांति चाहता है। न जाने कितने युगों से वह भटकता आ रहा है, इस युग में भी इस जन्म में भी यदि वह इसी प्रकार का रहा तो वह बहुत निराश जाएगा। अतएव जो भी कोई जन्म मिलता है उसमें परमात्मा यही आपसे साधना करवाता है, यही आपसे प्रयत्न करवाता है, हम सबसे प्रयत्न करवाता है कि इस मन की भूख मिटाई जा सके। असली भूख इसकी परमात्मा है, ये संसार नहीं चाहता। आप इसे और संसार देते हो और संसार देते हो, इससे उसकी भूख तृप्त नहीं होती, इससे उसकी प्यास बुझती नहीं है, वह और भटकता है। दोषी है तो हम दोषी हैं, उसका दोष बिल्कुल नहीं है। यदि हमने उसकी ये हालत करी हुई है तो हम जिम्मेदार हैं। संत महात्मा माताओं सज्जनों बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं और समझाते हैं। कहते हैं आज एक बालक बहुत जिद कर रहा है कि मुझे सोने की चेन चाहिए, पिता संभवतया देना नहीं चाहते, बच्चा है सोने की चेन कीमती चेन क्या करेगा, टालना चाहते हैं। अतएव उसे कुछ पैसे इत्यादि दे के तो कहते हैं बेटा अमुक मार्केट में चला जा, INA मार्केट में जाना, वहाँ फिश मार्केट है मीट मार्केट है, वहाँ तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। दिन भर बेचारा भटकता है, बालक है इनोसेंट है, पिताश्री की बात का पालन करता है, जो आज्ञा मिली उसका पालन करता है, दिन भर घूम के खाली हाथ वहाँ से लौट आता है। पिताश्री हर दुकानदार से मैंने पूछा मुझे सोने की चेन चाहिए, वे हंसते थे, मैं मजाक सा बन के तो घर को लौटा, उनके पास सोने की चेन नहीं है। भूल हो गई बेटा, तुम गलत जगह पर चले गए, आज ऐसे करो चांदनी चौक में जाओ, वहां कपड़े की मार्केट है, वहां तुम्हें सोने की चेन मिल जाएगी। बेचारा चला गया है, साड़ी बाजार चला गया है, दूसरी बाजार चला गया है, परांठे वाली गली चला गया है, घूमता फिरता है, पराठा तो खाया है लेकिन सोने की चेन नहीं मिली। आज फिर निराश घर लौटा है, आके कहता है, पिताश्री सोने की चेन तो मुझे वहां से भी नहीं मिली। आज सब्जी मंडी में भेजता है, सब्जी मंडी में तो बेटा जरूर मिल जाएगी, ट्राई सब्जी मंडी, वहां भी जाता है, उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। दिन भर की दौड़ धूप के बाद थका मांदा बालक आज फिर घर खाली हाथ ही लौटता है। कुछ दिन इस प्रकार से व्यतीत हुए। बाप ने ऐसी करने से वह अपने पुत्र का, पुत्र के विश्वास का पात्र नहीं रहा। ये बाप मुझे हमेशा गलत जगह पर भेजता है। अब वो यदि कहता भी है अमुक जगह पर जा, वहां सोने की हीरे की मार्केट है, वहां तुम्हें ये चीज मिलेगी, तो मैं मानता नहीं है, झूठा है। तो इतनी बार मुझे गलत जगह पर भेज चुका है और मैं वहां से निराश लौटा हूं, मेरे समय की बर्बादी हुई है। भक्त चलो, संत महात्मा कहते हैं यही हालत हमारी है। हमारा मन कभी संसार नहीं चाहता, हमारा मन परमात्मा चाहता है, हमारा मन परमात्मा की भक्ति चाहता है, हमारा मन भक्ति में जीवन चाहता है, वह भी परम सुख चाहता है, परम शांति चाहता है, परमानंद चाहता है, पर हम उसे बार बार संसार में भेजते हैं, अतएव हम उसके विश्वास के पात्र नहीं रहे। आज अनेक वर्षों के बाद आपकी मति ठीक होती है, आप सत्संग के में जाने के लिए उसे कहते हैं, झूठा कहेगा, ये मुझे कहीं और ले जाएगा, ये सत्संग में नहीं जाने वाला, आज तक इसने कभी मुझे सत्संग की ओर भेजा नहीं है, आज भी ये सत्संग की ओर नहीं जाएगा। धीरे धीरे साधक सुनो, यदि आप शक्तिशाली हैं, यदि आप बलवान हैं, तो आप उसे सिधाते हैं, नहीं मैं अब सत्संग में ही जाता हूं, मैं तुम्हें अब सत्संग में ही ले जाऊंगा, तो वह आपकी बात पर धीरे धीरे विश्वास करने लग जाएगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं, वह बिल्कुल नहीं, वह विरोध करेगा, वह देखेगा कि आप सत्संग में ना पहुंच सको, अनेक बाधाएं प्रस्तुत करेगा। क्यों? जैसा आपने उसके साथ किया है वैसा ही अब वह आपके साथ कर रहा है, आप ही की करनी आपके सामने आ रही है। वह चाहता था परम सुख, आपने उसे बहुत बड़ी गाड़ी दे दी, क्या करेगा उससे, उसे सुख सुविधा तो हो सकेगी, यातायात का साधन तो थोड़े समय के लिए उसका सुख तो मिल सकेगा, या अहंकार का क्षुद्र सुख तो मिल सकेगा, लेकिन वह परम सुख तो उसे प्राप्त नहीं हो सकेगा जो वह चाहता है। उसने मांगा, भक्ति दीजिएगा मुझे, सत्संगति दीजिएगा, आप उसे सिनेमा की ओर ले जाते हैं, अपने साथ किटी पार्टी में ले जाते हैं, या अपने साथ क्लब में उसे ले जाते हैं, वह क्या करेगा, वह बहुत असहाय महसूस करेगा। बिल्कुल यही हालत साधकों हमने मन की करके रखी हुई है, अतएव हम मन के विश्वास के पात्र नहीं रहे हुए हैं, वह हमारे ऊपर विश्वास खो चुका हुआ है, अतएव हर प्रकार की बाधा हमारे सामने वह प्रस्तुत करता है, बहुत विरोध करता है। देखो ना साधकों, जंगल में एक शेर होता है तो उसे राजा कहा जाता है। हमारे शरीर में साधकों, संत महात्मा कहते हैं 40 शेर हैं, 25 प्रकार की प्रकृतियां, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 40 शेर और इनका एक बादशाह मन। तनिक सोचें, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, मन कुछ भी नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। शरीर में एक दिन पहले भी आपसे अर्ज की थी, कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी का, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है वह आपकी सत्ता, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर तरह के गंदे से गंदे साधन भी प्रयोग करता है, ताकि मेरी एग्जिस्टेंस बनी रहे, मेरी सत्ता बनी रहे। एक सत्ताहीन अपनी सत्ता बनाना चाहता है तो वह अनेक प्रकार के साधन, दुस्साधन इत्यादि भी प्रयोग करता है, गलत भी प्रयोग करता है। ऐसा ही ये मन कर रहा है। 40 शेरों पर राजा राज्य करने वाला ये एक शासक मन, ये हमारा भी शासक हो गया है। क्यों? इसके मन में कोई संकल्प उठता है, आपका सहयोग न मिले तो ये कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दो साधक, कल्पना कीजिएगा, आपने कार स्टार्ट कर दी, कितनी देर तक कार अपने आप चलती रहेगी? आप थोड़ी देर के बाद एक्सीलेटर पर पांव रख के ऐसे दबाते हैं उसे, उसमें फ्यूल जाता है तो वह चलती रहती है, खड़ी भी है, चल ही रही है अभी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये स्टार्ट रहे, चलती रहे, फिर भी आपको एक्सेलेटर पर पांव रख के ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है तो फिर उसे फ्यूल मिलता है तो वह स्टार्टेड रहती है, अन्यथा खड़ी हो जाएगी। संत महात्मा कहते हैं इसी प्रकार से मन में कभी वासना जगती है, मन में कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या आती है, यदि आप उसे सहयोग नहीं देते, यदि आप उस एक्सेलरेटर नहीं दबाते तो वह वहीं एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, अन्यथा आपने एक्सेलरेटर दबाया तो साधक चुनो वह स्टार्ट रहेगी। ये सहयोग जो है ये एक्सेलरेटर है, और ये सहयोग हमारी कमजोरी है, ये मन अब हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है, अतएव हमारा शासक बन के बैठा हुआ है, हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है। ऐसे साधकों को जो मन के अनुसार चलते हैं उन्हें मनमुखी कहा जाता है, जो गुरु के अनुसार चलते हैं, परमात्मा के अनुसार चलते हैं उन्हें गुरुमुख कहा जाता है। वह गुरु के अनुसार चलते हैं, वह परमात्मा के अनुसार चलते हैं, वह अंदर की जो प्रेरणा है उसके अनुसार चलते हैं, काम के अनुसार नहीं, क्रोध के अनुसार नहीं, अभिमान के अनुसार नहीं, मन के अनुसार नहीं, वह परमात्मा के अनुसार चलने वाले हैं। आप तनिक सोचो बेटा, जिसने युगों युगांतरों से आपके ऊपर शासन किया है, अब बेटा आप उसे अचानक, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई है, अब आप उसी शासक को अपना नौकर बनाना चाहते हो, सोचो कितना विरोध वह करेगा। जिसने मलकियत देखी हुई है, जिसने आपके ऊपर शासन किया हुआ है, आप उसे अचानक आज अपना नौकर बनाना चाहो तो वह कितना विरोध करेगा। इसी विरोध को मेरी माता सज्जनो भटकना कहा जाता है। आप कहते हो बड़ा भटकाता है, बड़ा विरोध करता है, अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्यों नहीं करेगा? हमारा हमारी अपनी करने ही हमारे सामने आ रही है, हमने इसे सिधाया नहीं। देवी सज्जनों, मन एक बार सद गया, एक बार नियंत्रित हो गया तो ये ऐसे ही चलता है जैसे एक रिंग मास्टर के इशारे पर शेर और हाथी, ऐसे ही जैसे एक मदारी के इशारे पर बंदर और रीछ नाचते हैं, ये भी नाचेगा। पर बहुत साधना करने की जरूरत, बहुत अनुशासन में रहने की जरूरत, मर्यादाओं का ध्यान रखने की जरूरत, अपनी कमजोरियों पर अंकुश डालने की जरूरत। और सुगमतम साधन है ये साधक चरणों, परमात्मा का सतत स्मरण, उसके साथ जुड़े बिना ये इतना बड़ा काम एक साधक कभी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकेगा, अनेक जिंदगियों में भी नहीं कर सकेगा, परमात्मा के बल की नितांत जरूरत। शुभकामनाएं देवी सज्जनों, मंगल कामनाएं, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।